Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्ण यजुर्वेदी है, कठोपनिषद का विचार हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम के मन से कर रहे हैं। नचिकेता और यमराज के बीच संवाद प्रारंभ हो गया है। यमराज ने नचिकेता से कहा, तीन रात्रि तक मेरे द्वार पर बिना खाए पिए तुम रहे, इसके लिए तुम तीन कोई मेरे से वरदान मांग लो, ताकि अतिथि जो भूखा रह गया है उसका मुझे पाप न लगे, दोष न लगे। अतिथि यमराज के द्वार पर नचिकेता पहुंचा, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो कल आप लोगों ने श्रवण किया। सचमुच में इस मानव देह में पहुंचना और परमात्मा से मिलना एकमात्र लक्ष्य बनाना, यही यम के द्वार पर पहुंचना है। तीन रात्रि तक बिना खाए पिए रहना, इसलिए कि दिन का प्रयोग नहीं हुआ, रात्रि बताई गई। संसार में जितना भी व्यवहार व्यक्ति का होता है वो अज्ञान रात्रि के अंदर ही होता है। जिस अज्ञान रात्रि में व्यक्ति रह रहा है वो भी तीन रात्रि, तीन रात्रि का अर्थ है कि सत्व राजस और तामस, प्रकृति के जो तीन गुण है सत्व रज तम, तीनों गुणों का जो भोग करना है, तीनों रात्रि में भोग का त्याग किया है नचिकेता ने, अर्थात तात्पर्य यह निकलता है कि न सत्व का भोग किया, न राजस और न तामस का भोग किया है। संपूर्ण भोग का त्याग करके एकमात्र यमस्वरूप परमात्मा से मिलने का लक्ष्य बना लिया है। ऐसा जो उत्तम कोटि का साधक है, वही इस ब्रह्म विद्या को समझने का अधिकारी है, पात्र है। इसलिए यमराज उसे कहते हैं कि कोई तीन वरदान मांग लो। वरदान के रूप में कल प्रथम वरदान नचिकेता ने मांगा था, जिसको कहते हैं पितृ परितोष। ऐसा वरदान मांगा जिससे उनके पिता प्रसन्न हो जाएं, पिता का कल्याण हो जाए। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टम माभिवदेत प्रतीत, एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरं वृणे। तीनों वरदानों में मेरा पहला वरदान है कि हे मृत्यु, हे यमराज, शांत संकल्प सुमन यथा स्यात् वीतमन्यु गौतम। गौतम जो हमारे पिता हैं, ये शांत संकल्प हो जाए। ये पहला वरदान इसलिए मांग रहा है कि कोई भी व्यक्ति संसार में जब पैदा होता है तो उसके सिर पर तीन ऋण चढ़ते हैं, और जो व्यक्ति ऋणत्रय से मुक्त नहीं हो पाता वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए प्रथम व्यक्ति को ऋणत्रय से मुक्त होना चाहिए, और तीनों ऋणों से मुक्त होने का उपाय ही तीनों वरदान के द्वारा नचिकेता यमराज से यहां पर मांगेंगे। ऐसा उपाय जिससे ऋणत्रय से मुक्त हो जाए। आप यहां पर देखोगे, देख ही रहे हैं, पहला वरदान अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपने पिता की प्रसन्नता के लिए मांग रहा है। मेरे पिता ऐसे प्रसन्न हो जाएं, शांत संकल्प है। शांत संकल्प, क्योंकि व्यक्ति क्रोध में जब कुछ भी कर लेता है, परंतु जब उसका क्रोध विदा हो जाता है, उसके बाद क्रोध काल में की हुई चेष्टा या कर्म के प्रति बड़ी ग्लानी होती है। मन ही मन उसके मुंह से निकले हुए जो गलत शब्द है, उसके द्वारा उस आवेश में किया हुआ कोई भी विरुद्ध कर्म कार्य है, उस चेष्टा आदि को लेकर के बार बार मन में ग्लानी होती है। बार बार उसके मन में विचार आते हैं, अरे बेचारे को कितना कष्ट हुआ होगा, क्रोध में मेरे से ऐसा उनके लिए निकल गया, वो कितना भला व्यक्ति था, कितनी अच्छी बहन थी, और मेरी बात को सुनकर के भी उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अच्छा हुआ कि उसने सहन किया, मैं तो अपना काबू खो चुका था, मैंने अमुक आवेश में आकर के ऐसा कर्म कर डाला जो वास्तव में मुझे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं यह क्रोध क्यों आ जाता है, मुझे उस समय कुछ मालूम नहीं रहता, सामने वाले को कितना कष्ट हुआ होगा मेरे से, आदि आदि जो काम बिगड़ने के पश्चात व्यक्ति के मन में इस प्रकार के जो भाव आते हैं, और वही क्रोध जब फिर वापस आ जाए तो ये जो विचार वो शांत हो जाते हैं और फिर वापस वही गलती कर बैठता है। तो जब व्यक्ति आवेश में आकर के कोई भी भूल गलती करता है, बोलने में, कार्य की पद्धति में आदि आदि, उसके लिए पुनः पुनः उसको मन में संकल्प उठते रहते हैं कि मैंने गलत काम किया है। ऐसे ही नचिकेता के पिता के मन में भी ये ग्लानी और बड़ा पश्चाताप का भाव है कि मैंने आवेश में आकर के मेरे लाडले उस प्यारे हृदय के टुकड़े को यह बोल दिया कि मैं तुझे यमराज को देता हूं। और इस बात को लेकर के क्योंकि जब मुंह से निकल गया तो उसको सत्य करना भी उनका कर्तव्य था, इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की और यम के पास भेजा। परंतु पीछे से उन्हें बड़ी ग्लानि होगी, बड़ा पश्चाताप होगा, बार बार उनके मन में संकल्प उठ रहे होंगे, इसलिए वो शांत हो जाए। गतम न सोच्यम कर्तम न मन्ने, जो हो गया उसका क्या शोक करना और जो कार्य बिगड़ गया है उसके लिए क्रोध क्या करना। इसलिए पिता के लिए मैं ऐसा वरदान मांग रहा हूं यमश्री से, शांत संकल्प है मेरे पिता के मन में, जो बार बार ये संकल्प उठते हैं ये शांत हो जाए, अथवा लौकिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो इच्छाएं उठती है, कामनाएं उठती है, वो शांत हो जाए। क्योंकि किसी भी भोग को प्रदान करके और कामना को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, एक कामना की पूर्ति करता है इंसान तो दूसरी कामना खड़ी हो जाती है, एक की पूर्ति करेंगे अनेक कामनाएं उठ जाती है, और वही काम्य पदार्थों संबंधी बार बार उसके मन में नए 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 संकल्पों को जन्म मिलता रहता है, प्राकटन होता है। इसलिए यमराज से प्रार्थना करते हुए नचिकेता कह रहा है, मेरे पिता शांत संकल्प हो जाए, कोई उनके मन में इस तरह का कोई लौकिक पदार्थों संबंधी, परलौकिक भोगों संबंधी अथवा किए हुए कार्य के ग्लानि रूप कोई भी संकल्प उनके मन में न उठे तो कैसे हो जाए, सुमना हो जाए, मेरे पिता सुमना हो जाए, अच्छे मन वाले हो जाए, मेरे पिता निर्मल मन वाले हो जाए, काम क्रोधादि विकार उनके मन में न रहे, बिल्कुल निर्मल सुमन। सुमन अच्छे मन को बोलते हैं, सुमन पुष्प को भी बोलते हैं, जैसे पुष्प प्रसन्न और खिला हुआ रहता है, स्वयं पुष्प खिला हुआ है, प्रसन्न है, हल्का है, इसी प्रकार से हमारे पिता भी पुष्प की तरह प्रसन्न हो जाएं, खिले हुए रहें। जैसे पुष्प दूसरे को मोह लेता है, ऐसे ही हमारे पिता का मन इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना विशुद्ध हो जाए कि चुंबक की तरह दूसरे उनकी ओर आकर्षित हो जाए। इसलिए कि क्रोधी आदमी से प्रायकर लोग डरते हैं, दूर हटते हैं, सामने बोलने का साहस नहीं करने पर भी पीछे व्यंग्यात्मक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अरे दुर्वासा जी से संभल करके रहना, बड़ी मुसीबत है। इसलिए कहीं ऐसी स्थिति ना आ जावे, हमारे पिता का मन सुमन बन जाए, इस पुष्प की तरह खिला हुआ होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, पुष्प स्वयं प्रसन्न रह करके दूसरे को प्रसन्नता बांटता है, ऐसे ही व्यक्ति का मन स्वयं प्रसन्न रह करके और दूसरे को प्रसन्नता बांटे, ऐसा पिता का मन भी सुमन हो जाए, ऐसी प्रार्थना यमराज से नचिकेता यहां पर कर रहे हैं। वीतमन्यु हूं, तीसरी मेरा वरदान में यही मांग है कि पिताश्री वीतमन्यु हो जाए। मन्यु बोलते हैं क्रोध को, उनको बात बात पर, छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, वो विचार करने से पूर्व क्रोधित हो जाते हैं, और जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो उचित निर्णय करने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा अनुग्रह करिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिता का जो क्रोध है वो बीती हुई बात हो जाए, माने ये कहने लग जाए कि मुझे कभी बहुत क्रोध आया करता था, अब क्रोध आता नहीं है, उस क्रोध को आने नहीं दूंगा, ऐसी स्थिति पिता की बन जाए। क्रोध आना स्वाभाविक था, लेकिन ऐसी कृपा आपकी हो जाए, ऐसा विवेक उनके प्रति जागृत हो जाए कि फिर कभी उनको क्रोध ना आवे, वीतमन्य हो जाए। और जब आप मुझे वापस लौटाएंगे, चतुर्थ बात इस पहले वरदान में मांग रहा है, यहां से जब आप मुझे वापस पिता के पास लौटाएंगे, ये मुझे मालूम है, क्योंकि पूर्व में जब मैं आया था आपने सारा स्वर्ग दृश्य का सुंदर प्रदर्शन मुझे करवा करके और वापस लौटा दिया था। ठीक है, आप मुझे जब वापस लौटाएंगे तो मेरे पिताश्री मुझे कहीं ऐसा न समझ ले कि काल के गाल से तो प्रेत आता है, कहीं ये मेरा पुत्र नहीं है, कहीं अन्य तो नहीं है, आदि आदि की भावना उनके अंदर न हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब आप मुझे वापस लौटाएंगे तत् प्रसृष्टम, आपके द्वारा जब मैं वापस प्रसृष्ट हूं लौटाया जाऊं तो लौटाने पर माम अभिवदेत, मुझे पहचान ले और मेरे पिताश्री शांत मन होकर के, प्रसन्न मन होकर के, और फिर मेरे से बात करें, प्यार से बात करें, ये मैं आपसे वरदान मांगता हूं। प्रथम वरदान बताइए, नचिकेता ने इसमें अपने लिए क्या मांगा? अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। दुनिया के लिए क्या मांगा? दुनिया के लिए भी कुछ नहीं मांगा है। एकमात्र नचिकेता सिर्फ पिता के लिए मांग रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पितृ परितोष। जिसमें पिता को शांति प्राप्त हो जाए, पिता प्रसन्न हो जाए, संतान का पहला कर्तव्य यह बनता है अपने जीवन से ऐसा आचरण करे जिस आचरण को देख करके पिता प्रसन्न हो जाए। इससे क्या पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहला वरदान मांगा। तीन ऋण होता है पितृ ऋण, पितृ में माता और पिता दोनों ही आ जाते हैं। माता से पिता से पितरौ करके संस्कृत में आता है, माता और पिता को दोनों को मिलाकर के पितर शब्द से बोलते हैं, और वो जो पितर है वही पित्री है। इसलिए संतान का पहला कर्तव्य है, जिस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता का ऋण चढ़ता है, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने कर्म के द्वारा प्रथम माता पिता का ऋण उतार दिया जाए। उसके बाद दूसरा ऋण रहता है जिसको बोलते हैं ऋषि ऋण। माता पिता ने शरीर को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेने मात्र से इंसान मनुष्य नहीं बन जाता है या मानवता नहीं आ जाती है। एक नर नारी के रूप में यह शरीर आता है, बालक या बालिका के रूप में शरीर आ रहा है, स्त्री पुरुष के रूप में शरीर प्राप्त होता है, लेकिन इस मानव देह में जो मानवता है वो मानवता देने वाले हमारे ऋषि महर्षि है, इंसानियत देने वाले ऋषि महर्षि है। बाकी यदि मानवता इस शरीर को पाकर के न ली गई तो उस जानवर में और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। खाने पीने का काम तो जानवर भी करता है, हम लोग भी वही काम करते, मनुष्य भी वही काम कर रहा है, अपने पेट की फिक्र सबको लगी हुई है, पशु को भी और मनुष्य को भी। बाल बच्चे संतान पशु भी पैदा करता है, मनुष्य भी पैदा कर रहा है। मरने का डर जानवर को भी लगता है, मनुष्य को भी लगता है। अपना परिवार या भोग पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। यहां के भोग छूट जाएंगे तो आगे और शरीर मिलेगा, फिर भोग प्राप्त हो जाएंगे। यहां का परिवार छूट जाएगा तो आगे कोई न कोई दूसरा परिवार प्राप्त हो जाएगा। संसार में यहां के भय से डर करके खुदकशी भी कर लेगा, जहां जन्म लेगा वहां मृत्यु का भय फिर आ जाएगा। ये संसार का नियम है, ये तो सब शरीरों में समान रूप से पाए जाएंगे। लेकिन जो मानवता है, इंसानियत है, और जिस मानवता को पाकर के व्यक्ति अपना जीवन ऐसा बना ले कि फिर संसार के जाल में, जन्म मृत्यु के चक्र में न पड़ना पड़े, ये सुलभ अवसर तो केवल मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है। परंतु मनुष्य का जो कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, प्राणी मात्र के प्रति क्या कर्तव्य है, ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है और जीवन जीने की दिशा जिनसे प्राप्त हुई है, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य बोध यदि प्राप्त होगा तो मात्र शास्त्र से होगा। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न च सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग कर दे, और सिर्फ अपने मनमाने ढंग से चलने लग जाएगा ना, तो वो इंसान नहीं है, एक तरह से इंसान के रूप में विचरण करता हुआ पशु है, जो कामकारिता से अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर रहा है। व्यक्ति को एक सही दिशा दे रहे हैं, ऐसी दिशा दे रहे हैं जिसको करने से उसे सुख प्राप्त हो, जीवन की सफलता प्राप्त हो। यह दिशा मात्र शास्त्र से प्राप्त होती है, और वो शास्त्र कोई किसी एरे गेरे व्यक्तियों के लिखे हुए नोवेल नहीं है, किसी के उपन्यास नहीं है, वो तो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों की आजीवन तपस्या का परिणाम है, उनका फल है। जिस तपस्या का फल को ग्रहण करके व्यक्ति मात्र अपना जीवन मानवता के साथ में जी करके सफल बना सकता है, इसलिए उन महान पुरुषों का, उन ऋषियों का जो हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए उनके द्वारा प्रतिपादित या उनके द्वारा दर्शित जो वैदिक मंत्र है, जो ऋचाएं हैं, उसको हम समझें, उनके अनुचर बने और उसको समझ करके हम अपना जीवन बना लें, तो उसको देख करके ऋषि महर्षियों को भी प्रसन्नता हो जाएगी। इसलिए वेद के अनुसार अपना जीवन जिए, वेद मंत्रों का पालन करें, शास्त्र के अनुसार जब हम चलते हैं तो इससे ऋषि गुणों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। ठीक है, हमारी साधना का फल ये जो ऋचाएं, ये वेद मंत्र प्रकट हुए हैं, ये वेद मंत्र लाखों लाखों प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं, हमारी साधना सफल हुई, ये देख करके उन ऋषियों को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए उस ऋण को उतारने के लिए दूसरा वरदान आने वाला है। आप देखोगे वो सुंदर वरदान आएगा अग्नि विद्या संबंधी, जो वैदिक अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या का पालन करके और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की जो साधन भूता है, उस विद्या को प्राप्त करने का अर्थ है कि हम वैदिक पद्धति से अपना जीवन जी करके और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएं। इसलिए दूसरा वरदान मांगेगा, और ये भी दूसरे वरदान का प्रयोजन होगा कि यहां पर संसार में सुखी रहना है तो जिन्होंने शरीर दिया है उनके सेवा में अपना शरीर काम आ जाए, तो ये संसार में सुखी जिएंगे, शांत प्रसन्न जिएंगे, और इसके बाद परलोक भी सुधरना चाहिए, ये लोक और परलोक। यहां सब कुछ सदव्यवहार करने के बाद आगे हमारा क्या होना है, उस परलोक को सुधारने की जो बात है, उसके लिए दूसरा वरदान आने वाला है। और तीसरा जो वरदान मांगेगा नचिकेता स्वयं अपने लिए मांगेगा, क्योंकि जब तक ये जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेता है, अनुभव नहीं कर लेता, तब तक देव ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मानव का सर्जन किया है, ये देह दी है, तो इसीलिए दिए कि ब्रह्माव लोक दिशा मुद माप देव, आपने सुना था, वो परमेश्वर को तभी प्रसन्नता होती है जब उसकी दी हुई बुद्धि को सदुपयोग करके, शास्त्र चिंतन करके और परमात्मा को जान ले, अपने अंतरात्मा के रूप में जान ले, जिस परमेश्वर से बहुत दूर 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 भटक रहा था, उस परमेश्वर को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव कर लेंगे, बस इतने में परमेश्वर को प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। इसलिए तीसरा वरदान नचिकेता मांगेगा, स्वयं के संबंध में, आत्मा के संबंध में वरदान मांगेगा। ये तीन वरदान नचिकेता मांगने जा रहा है। पहला जो वरदान मांगा अभी आपने सुना, पितृ प्रीतोष, ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि ये पितृ ऋण से मुक्त हो। एक कथा मुझे ध्यान में आ रही है, आज थोड़ा जल्दी भी छोड़ने की सोच रहा था मैं, पर बहुत एक अच्छी बात ध्यान में आ गई, आपको सुनाएंगे, बड़ी काम की चीज है। पुराणों की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, महर्षि जमदग्नि एकांत में जंगल में रहकर के साधना तपस्या करते हैं, वो भी महर्षि थे, गृहस्थ जीवन में थे, और विदर्भ देश के राजा की जो कन्या थी रेणुका, उस रेणुका के साथ में जमदग्नि महर्षि का विवाह हुआ, और एक राजकुमारी प्राचीन पद्धति के अनुरूप विवाह करके जब ऋषि के आश्रम में जाती है, तो इस बात को आप भलीभांति जानते हैं कि जो सुख सुविधाएं, भोग विलास एक राजघराने में प्राप्त होते हैं, वो किसी तपस्वी के कुटिया में प्राप्त हो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए जब वो राजकुमारी जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है, तो वैराग्य तो था नहीं, जमदग्नि ऋषि थे तो वो ऋषि वो थे, लेकिन आने वाली रेणुका की वृत्ति तो वो नहीं थी, वो तो भोग विलास में जीने वाली एक राजकुमारी थी, और जब ऋषि के आश्रम में आ गई, मर्यादा के अनुसार बंद गई, आजकल की स्थिति होती तो एक से दूसरा दिन नहीं लगता, लेकिन वो प्राचीन स्थिति थी, इसलिए प्रणय सूत्र में बंद गई, या यूं कहो कि मर्यादा में बंद गई।